मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अर्हन्तादि जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं के सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं के सतत केवल ज्ञान पाने।
बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज हम सभी लोग 12 भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं और उससे रोज एक न एक नई सलाह भी लेते हैं। 12 भावनाओं के चिंतन से हमारा मोह घटता है, हमारा भ्रम दूर होता है, हमारे भीतर वास्तविकता की जानकारी, वास्तविकता का बोध होता है। और इतना ही नहीं, हमें इस संसार के दुखों से बचने का उपाय भी सूझता है। असल में बार बार चिंतन की प्रक्रिया हमारे विचारों को दृढ़ बनाती है और हमारे आचरण को परिवर्तित करने में मदद करती है। गाय को अपन ने देखा होगा, जब घास खाती है तो खाती चली जाती है, उस समय जो है वो उसके गले में थैली होती है तो खाती चली जाती है और उस थैली में रखती चली जाती है, पेट में नहीं जाती। अपन सोचते होंगे कि इतनी खाली घास, नहीं, वो रखती चली जाती। फिर बाद में जब चुपचाप बैठती है कहीं तो उस थैली में से निकाल के मुंह में लाती है और फिर चबा चबा करके फिर खाती है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं रोमंथन, रोंथना है। यही प्रक्रिया अनुप्रेक्षा की है या 12 भावनाओं की है। रोमंथन करना, जो जाना उसे बार बार विचार करना। तो देखो, जैसे कि गाय अगर सीधी घास खा ले तो नहीं पचेगी उसे और उसका रस भी नहीं बनेगा और वो आराम से बैठ करके उसे चबाती रहती है, जुगाली करती रहती है तो उसमें से रस बनता है और वो रस उसके जीवन को पुष्ट करता है, समृद्ध करता है। ऐसे ही ये अनुप्रेक्षा या 12 भावना है। अगर हम विचार की इस प्रक्रिया को जब खाली बैठे हों तब निरंतर दोहराएं तो ये हमें लाभ पहुंचाती है। आज बोधि दुर्लभ भावना पर अपन विचार कर रहे हैं कि धनकन कंचन राजसुख सबई सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, या अंतिम ग्रीवक लो की हद पायो अनंत विरियापद पे सम्यक ज्ञान न लादो दुर्लभ निज में मुनि साधो। बोधि संसार में दुर्लभ है। बोधि के मायने क्या है? तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणाम अप्राप्य प्रापणम बोधि। अभी तक नहीं प्राप्त हुए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति का नाम बोधि है। इसलिए ये दुर्लभ है क्योंकि अभी तक प्राप्त नहीं हुई। और बाकी चीजें तो हमारे संसार में कई कई बार हमें अनंत बार प्राप्त होकर के हमसे छूट गई हैं। धन कन कंचन राज सुख, ये सब सुलभ है। हालांकि अगर देखा जाए तो ये भी दुर्लभ है, इसलिए लिखना पड़ा है मंगत राय जी को कि दुर्लभ है निगोद से थावर अरुत्रस गति पानी। तो सुर काया को नरपति तरसे, नहीं उल्टा बोल दिया, नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राय। ये सब दुर्लभताएं उसमें गिनाते हैं, यहां तक कहते हैं कि मुनि बनना दुर्लभ है, फिर कहते कि वो भी ज्यादा दुर्लभ नहीं है, शुद्ध भाव करना ज्यादा दुर्लभ है, फिर बाद में कहते कि शुद्ध भाव करना भी दुर्लभ नहीं है, वास्तव में तो केवल ज्ञान की प्राप्ति ही दुर्लभ, पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भाव में आ गए। अरे तो फिर ऐसा है तो सभी चीजें दुर्लभ हैं क्या? तो फिर बोधि दुर्लभ का अर्थ क्या हो? ऐसा मन में आता तो है। तो भैया अपन थोड़ा सा विचार करें इस चीज का कि ये जो धन कन कंचन इत्यादि हैं, ये स्थावर से त्रस पर्याय प्राप्त करना और उसमें भी फिर मनुष्य होना, ये सब हमारी इच्छानुसार नहीं हो सकते, इसलिए दुर्लभ है। लेकिन हमें कई कई बार प्राप्त हो गए हैं, इसलिए सुलभ भी है। देखो ऐसा समझें इसको, ये सारी चीजें हम चाहें तो हमारे इच्छा करने पर ये प्राप्त नहीं होती, इसलिए दुर्लभ है। लेकिन हमने कई बार अपने जीवन में इनको प्राप्त कर लिया है, इसलिए ये सुलभ भी हैं। पर जो रत्नत्रय है वह तो दुर्लभ ही है, क्योंकि अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ। तब फिर इससे तो और जरा मुश्किल हो गई, क्योंकि जो चीज दुर्लभ है तो फिर हमारा उत्साह जागृत नहीं होता कि भैया इतनी दुर्लभ चीज है, अब अपन को कैसे मिलेगी, मिल ही नहीं सकती, तो निराश हो सकते हैं। नहीं, दुर्लभता बताने का उद्देश्य क्या है? दुर्लभता बताने का उद्देश्य है कि हम सतर्क हो जाएं, हमारी लापरवाही से इतनी दुर्लभ चीज हमसे मिस हो रही है, हम उसको नहीं पा पा रहे हैं, इसलिए हमारी सतर्कता होगी तो हम पा लेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारा अपना स्वभाव है, इसलिए सुलभ भी। तो बोधि सुलभ भी है, सुलभ इसलिए है क्योंकि वो मेरा स्वभाव है, इसलिए मुझे प्राप्त हो सकती है। ऐसा नहीं समझना कि मुझे कभी प्राप्ति नहीं हो सकती, अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ये बात तो ठीक है, लेकिन मुझे कभी प्राप्त नहीं होगी, अभी तक प्राप्त नहीं हुई इसलिए दुर्लभ है, जब चाहूं तब मैं प्राप्त कर सकता हूं इसलिए सुलभ है। देखो बाकी चीजों का पुरुषार्थ करो, मिले न मिले, क्योंकि वे हमसे भिन्न हैं, धन कन कंचन इत्यादि कितव इच्छा करो, जरूरी नहीं है कि मिल ही जाए, पुण्य के और उदय में मिलती हैं और पाप के उदय में नष्ट हो जाती हैं। लेकिन जो मेरी बोधि है, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, वो तो मुझे हमेशा सुलभ है, अगर मैं सतर्क हो जाऊं तो वो तो मेरा स्वभाव ही है, वो तो मुझे अब बिना किसी उसके प्राप्त हो सकती है। मैं अगर ये जो संसार की चीजें पाने का जो प्रयत्न है वो छोड़ दूं तो बड़े आसानी से मुझे ये दुर्लभ चीज भी मिल सकती है, ऐसा विचार करने से हमारे भीतर उत्साह जागृत होता है। कोई चीज मेरी अपनी है तो उसको प्राप्त करने की लगन पैदा होती है, और अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ऐसी दुर्लभता का बोध होने पर बड़ी सतर्कता आ जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया बहुत दुर्लभ है, अभी तक प्राप्त नहीं हुई, का पता आगे मिले के नहीं मिले, छोड़ो जो उन चीजें मिल रही वे प्राप्त कर लो, आसानी से जो मिल रही वो प्राप्त कर लो, कौन पड़े मुश्किल में। कहते ऐसा नहीं, ऐसा तो अपन संसार में हमेशा विचार करते हैं, अब ऐसा विचार करना कि अरे जो चीज मेरी है वो तो मुझे सुलभ ही है, पर अभी तक मेरी लापरवाही से मुझे वो सुलभ नहीं हो पाई, इसलिए दुर्लभ है, मैं उस दुर्लभ चीज को अब प्राप्त प्रापणम बोधि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणाम और निर्विघ्नेन भवांतर प्रापणम समाधि, और उस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र बोधि को अगर मैं अपने भवांतर में भी साथ ले जा सकूं तो वही समाधि है, और बोधि समाधि ही संसार से पार करने वाली है और संसार में सबसे ज्यादा दुर्लभ है, ऐसा अपने मन में भाव आना चाहिए। ये जो सम्यक ज्ञान रूप बोधि है वो अत्यंत दुर्लभ है। क्यों सम्यक ज्ञान रूप बोधि दुर्लभ है? भैया ज्ञान तो सब जीवों को है। तो जैसे हमने पहले भी एक उदाहरण दिया था कि दूध होवे अपने पास में और बहुत अच्छा उज्जवल है, हैं? और बहुत गाढ़ा भी है, भैया इससे काम नहीं चलेगा। कितना साफ सुथरा दूध होवे और कितना गाढ़ा होवे, इससे दूध की क्वालिटी डिसाइड नहीं होती। क्वालिटी इससे डिसाइड होती कि मलाई कितनी निकली और घी कितना निकलो, हैं? या कि इससे होती है कि दही बनने पर कितना उसमें से नवनीत निकलेगा। जैसे कि दूध की विशेषता इन बातों से है, ऐसे ज्ञान की विशेषता या बोधि की विशेषता इससे है कि हम उस ज्ञान के माध्यम से अपना कल्याण कर लेवें। इसमें लिखा कि काम क्रोध मद लोभ की सब जबलक घट में खान, काम क्रोध मद लोभ की जबलक घट में खान, कबीरा मूरख पंडिता दोनों एक समान। कबीर कह रहे हैं कि मूरख और पंडित दो ही समान है, अगर काम क्रोध मद लोभ की घट में खान है तो इनको जिसने दूर कर लिया उसका ज्ञान ही समीचीन ज्ञान है, नहीं तो मूरख आदमी और ज्ञानी आदमी में ज्यादा अंतर नहीं है। इसलिए सम्यक ज्ञान वो है जो कि हमारी कषायों को घटा देवे, हमारी कषायों को मंद कर देवे, और कषाय की मंदता होने पर हमें जो है अपने आत्म बोध की प्राप्ति होवे, हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की सुध अपने भीतर उत्पन्न होवे। तीव्र कषाय के उदय में बोधि तो किसी को नहीं प्राप्त हो सकती, बोधि की प्राप्ति का उपाय तक नहीं बन सकता है। अपनी कषाय मंद होती तो थोड़ा विचार बनता है कि हाँ मुझे जो है इस तरह अपने जीवन में जो दुर्लभ है उसे प्राप्त कर लेना चाहिए। भैया इस तरह से अगर हम बैठ करके इस बोधि का विचार करें और बोधि की प्राप्ति का उपाय करें तो ये हमें सुलभ हो सकती है, ऐसा उत्साह हमारे भीतर जागृत होना चाहिए और होगा अगर हम बार बार इस चीज का चिंतन करेंगे। जैसे अपन को कोई चीज नहीं मिलती है और दूसरे के पास अपन देखते हैं तो उससे पूछते हैं कि काबी ये तुम्हें कैसे मिली, हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं हमें नहीं मिल रही, कहां से लई जा तुमने चीज, ऐसा पूछते कि नहीं पूछते, कौन सी दुकान से ले आए थे, बहुत सुंदर है, हम तो वहां से लाए थे लेकिन हमें तो मना कर दिया उसने, हो सकता है स्टॉक खत्म हो गया होगा, तो अब कब आएगा उसका स्टॉक, अब रोज चक्कर लगाते कि मिल जाएगी। अरे जब हम संसार की चीजें पाने के लिए इतना पुरुषार्थ करते इतने उत्साहित रहते हैं तो जो चीज मेरी अपनी है उसके लिए भी ऐसा ही निरंतर प्रयत्न और उत्साह क्यों नहीं है हमारे भीतर, ये विचार करना चाहिए। बस अगर मुझे संसार की सारी चीजें प्राप्त करने का उत्साह है और पुरुषार्थ है तो ठीक वैसे ही अपने इस बोधि की प्राप्ति के लिए उत्साह और हमारे भीतर पुरुषार्थ जागृत हो जाए, ये कौन करेगा, ये चिंतन से ही होगा। और ये जो लिखा है छैठाला में के अंतिम ग्रीवकलों की हद पायो अनंत विर्यापद पे सम्यक ज्ञान नराधो दुर्लभ निज में मुनि साधो, मुनि जन ही इस बोधि को अपनी साधना के द्वारा प्राप्त कर पाते हैं। वैसे तो अंतिम ग्रीवकल तक ये जीव अनेक बार जाकर के आ चुका है, सो इसकी व्याख्या कैसी करना जरा इसमें भी सावधानी रखने की बात है। इसको लोग अपने तरह से व्याख्या करते हैं, भैया अपन को उस व्याख्या में नहीं जाना। कैसी व्याख्या करते कि देखो तो अंत ग्रेव्य तक चले गए मुनि बन के, मनोज्ञान ने है तो सो कछु नहीं भाव, ऐसी व्याख्या करने से क्या होता, तो फिर अपन को मुनि बनने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा अर्थ निकाल लिया अपन ने। ये अर्थ ठीक नहीं, अर्थ क्या निकालना कि देखो इतना सब तो पुरुषार्थ किया पांचों इंद्री के विषय छोड़े, घर छोड़ा, पांच महाव्रतों का पालन किया, लेकिन मेरे भीतर कहीं क्या कमी रह गई जिससे कि मुझे उस बोधि की प्राप्ति नहीं हो पाई। अब मुझे उस कमी को भी दूर करना है। बनना तो है मुझे पहले नंबर मुनि, बाहर से रत्नत्रय पहले अंगीकार करूंगा, उसके बाद मुझे अपनी उस खोट को भी निकाल देना है। भैया घड़े में हमेशा जो है और फूट फूट जाता है, ठीक नहीं बनता है, तो क्या घड़े बनाना कोई बंद कर देता है? बनाता है, उसमें जो खोट है उसको आसानी से निकालने का प्रयत्न करता है। ऐसा ही विचार करना, अपन उसका विचार ये कर लेते हैं, क्योंकि गृहवियोग जाना बाह्य में बिना मुनि बने तो संभव ही नहीं। और कोई भव्य जीव होवे तो ध्यान रखना 32 बार से अधिक मुनि नहीं बनता जी। अभव्य जीव की चर्चा है कि अनंत बार मुनि बन करके गृहवियोग चला जाए, बहुत स्पष्ट है ये। हाँ, इसलिए ऐसे किसी भ्रम में नहीं अपन को रहना चाहिए। अपने को ये लगन, ये उत्साह बना रहना चाहिए कि मुझे तो इस रत्नत्रय की प्राप्ति का जो उपाय है वो निरंतर मुझे करना है, और मैं हर बार चूक जाता हूं, मुझे अब इस बार जो है चूकना भी नहीं है। इस तरह यदि हम उस रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए उसकी दुर्लभता का विचार करें तो फिर और चीजों का विचार भी करना पड़ेगा। ये तो अपन ने समझ लिया कि बोधि बहुत दुर्लभ है, लेकिन उस बोधि की दुर्लभता के साथ और भी किसी चीज की दुर्लभता है कि नहीं? कहते हैं तो जी बोधि स्थावर जीवों को तो मिलेगी ही नहीं। अच्छी बात, तो त्रस को मिलेगी? कहते हैं त्रस को मिलेगी, लेकिन दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी पंच इंद्री को नहीं मिलेगी। अरे भैया, तो संगी को मिलेगी? कहते संगी को भी तो मिलेगी, लेकिन देवों को, नारकियों को, त्रियंच को संगी पंच इंद्री हो गए तो भी नहीं मिलेगी। अरे बड़ी दुर्लभता है। किस चीज की दुर्लभता आप समझ में आ रही है? बोधि के साथ साथ और किस चीज की दुर्लभता है? ये बोधि जिस भाव में होती है उस भाव की दुर्लभता भी है। हाँ, अकेले बोधि तो दुर्लभ है ही, लेकिन ये बोधि क्यों, किस भाव में दुर्लभ है? किस हरेक भाव में, मनुष्य के भाव को छोड़ करके बाकी सबके भाव में ये दुर्लभ है। एकमात्र मनुष्य भाव में ये सुलभ है, इसलिए मनुष्य भाव की प्राप्ति होना भी दुर्लभ। देखो, चूंकि इस बोधि की प्राप्ति मनुष्य भाव में होती है और बोधि वैसे ही दुर्लभ है, इसलिए मनुष्य भाव भी दुर्लभ। ऐसा कभी अपने मन में विचार नहीं आता है। इस मनुष्य भाव की दुर्लभता इसलिए है भैया क्योंकि इसी मनुष्य भाव में बोधि की प्राप्ति होती है, और किसी भी जीव को बोधि की प्राप्ति नहीं हो सकती मनुष्य के अलावा, चाहे देव क्यों ना हो। वे इतना मनुष्य भाव अपन का दुर्लभ, इसका विचार भी साथ में करना चाहिए कि मुझे ये मनुष्य भाव मिला है कहे के लिए मिला है, इसकी सार्थकता किस में है? इसकी सार्थकता उस बोधि की दुर्लभता को समझने में है, और इतने ही नहीं, उस बोधि की दुर्लभता को समझ करके उसे प्राप्त करने में भी है। दुनिया की बाकी की चीजें तो मनुष्य भाव के मिल जाने पर मिल जाती हैं सहज रूप से, लेकिन मनुष्य भाव के मिलने पर बोधि मिल जावे ये बहुत दुर्लभ है। एक तो मनुष्य भाव ही दुर्लभ है और उसमें ये बोधि दुर्लभ है। एक बहुत फकीर व्यक्ति था, बाबा था, उसने अपने झोपड़ी के बाजू में और एक बगीचा लगा रखा, और बगीचे पर एक तख्ती लगा रखी थी कि जो पूरी तरह से संतुष्ट हो वे उसको बगीचा हम भेंट करेंगे। खूब लोग आते थे उसके यहां पर। इस संसार में बाकी चीजें मिल जाने के बाद भी संतोष हो वे ऐसा बहुत कठिन है, और जो व्यक्ति संसार की सब चीजों से संतुष्ट हो गया है भैया, वो ही व्यक्ति बोधि की प्राप्ति या उसकी दुर्लभता को समझ सकता। अब अपन को संतोष नहीं है अपने संसार की सब चीजों को, सो उन्हीं की प्राप्ति में अपन लगते हैं, और ये पक्का है कि कितना भी प्राप्त करते जाओ संतोष कभी नहीं होगा। आप 24 घंटे घर गृहस्थी को काम करते रहो तो कछु ऐसो नहीं है कि जी 5 मिनट फुर्सत मिल गए अब धर्म ध्यान को, आप अगर निकाल लो तो निकल आएंगे, नहीं तो 24 घंटे में से 1 मिनट नहीं निकलना। ठीक ऐसा ही है, समझ लो। ये संसार की बाकी सब चीजें, लेकिन जब समझ में आए तब की बात है। ये तो अपन चर्चा कर रहे हैं, पर अपनी समझ में कब आएगी? अकेले चर्चा से समझ में नहीं आती, निरंतर खुद विचार करेंगे तो समझ में आएगी। और खूब लोग आते थे, हमें दे दो, हमें तो बिल्कुल संतोष है, हमें कुछ नहीं चाहिए, सबको लौटा देता। जब राजा को मालूम पड़ा तो राजा ने कहा, भाई हमें कैसे लौटा सकते, हम तो पूर्ण संतुष्ट हैं, जो जो चीजें चाहिए थी सब हमारे पास में है। तो एक दिन राजा पहुंच के उस फकीर के पास, कहने लगे, ये बगीचा तो आप हमें दे दो, हम पूर्ण संतुष्ट हैं। तो मालूम उसने क्या जवाब दिया था, कहने पूर्ण संतुष्ट हो तो बगीचा मांगवे काय आए। अगर पूर्ण संतुष्ट हैं तो संसार की चीजें क्यों मांग रहे हैं? क्यों आपको बगीचा चाहिए? तो कहते कि आप किसको दोगे? कहते जो मुझसे मांगने नहीं आएगा, मुझे जिसे देने जाना पड़ेगा उसको दूंगा, उसके योग्य है ये। पूर्ण संतुष्ट वही है भैया जो बोधि की दुर्लभता समझ लेता है, वही पूर्ण संतुष्ट है, और वही जो है उसकी प्राप्ति के लिए उपाय करता है। अपन तो छोटी छोटी संसार की पीत चीजों की प्राप्ति के लिए लगे हुए हैं, और उसकी प्राप्ति हो जाने पर हर्षित हो जाते, नहीं प्राप्ति होती तो दुखी हो जाते हैं। उसके लिए बस अपन को विचार करना चाहिए कि ये चीजों का संयोग वियोग तो होता ही रहता है। अपन को मुख्य जो बोधि है, सम्यक ज्ञान है या रत्नत्रय की प्राप्ति है, वो इस मनुष्य भाव में बहुत दुर्लभता से अपन को मनुष्य भाव मिला, और उसकी प्राप्ति ही अपन को आवश्यक है। उसकी सार्थकता ही मनुष्य भाव की इसमें है कि हमने बोधि की प्राप्ति कर ली। इसी भावना के साथ कि अपन इस मनुष्य भाव में उस रत्नत्रय रूप बोधि को अवश्य प्राप्त कर सकें। बोली आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज।
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला। शिव के निष्कंटक पथ में विष्कंटक होता हो, अब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते।
केवल ज्ञान होने तक मौन ही रहे, वास्तव में तो जो सही में सत्य को पाना चाहता है उसे तो मौन ही धारण करना चाहिए, लेकिन क्या करें, वचन व्यवहार के माध्यम से वस्तु स्वरूप समझ में आता है, और हम इतने अभी स्वयंभू तो है नहीं कि बिना किसी उपदेश के और हम मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो जाएं। हमें तो उपदेश की आवश्यकता होती, तो उसके लिए कह रहे हैं कि उपदेश के लिए भाषा समिति का ध्यान रखना हित में तो प्री बोलना। अकेले मुनि महाराज को ही भाषा समिति का ध्यान रखना पड़ता हो सो ऐसी बात नहीं कहीं लिखी है, मुनि महाराज को तो रखना ही चाहिए, लेकिन श्रावक जनों को भी जो है इस बात का थोड़ा विचार करना चाहिए, अगर वे भी सच को पाना चाहते हैं कि हित में तो प्री हो। आपको याद है शायद वो उदाहरण मैंने कभी सुनाया कि नहीं सुनाया, या और भी आपने पहले कहीं सुना हो। एक राजा का मन हुआ कि वो अपना चित्र बनवाए, लेकिन वो राजा जो है वो एक आंख उसकी थी नहीं। मैंने उस शब्द का प्रयोग नहीं किया आप जिसका करते हैं, शब्दों के प्रयोग में भी सावधानी तो रखना पड़ेगी। अपने यहां तो चोर को भी चोर नहीं कहना ये भाव सत्य है, कोई पूछे कि ये चोर है, जानते हो कि चोर है, पर उसको चोर नहीं कहना, अपने मुंह से भाव सत्य अगर बोलना है, 10 प्रकार का सत्य होता है, अभी कभी अपन उस पर विचार करेंगे तो बहुत मुश्किल पड़ती है। उसमें से भाव सत्य में उदाहरण दिया है कि कोई चोर है, मालूम भी है, पर उसको चोर अपने मुंह से नहीं कहना। तो वो राजा अपना चित्र बनवाना चाहते हैं, चित्रकार आते हैं, चित्रकार मुश्किल में है कि कैसा चित्र बनाए। अगर एक आंख राजा की नहीं बनाई जाएगी तो सुंदर नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन मन में यह भी विचार है कि सच्चाई कैसे बनाई जाए। चित्र सच भी होना चाहिए और प्रिय भी होना चाहिए। बहुत मुश्किल में है, पहला वाला तो ज्यादा विचार नहीं करता, वो राजा की दोनों आंखें ठीक ठीक बनाता है, बहुत सुंदर बनाता है। दूसरा वाला सोचता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, अकेले सुंदरता से क्या होने वाला, सच्चाई आनी चाहिए। राजा की आंख नहीं है, अगर तो आंख नहीं है तो नहीं बनाएंगे और क्या फर्क पड़ता। तो उसने एक आंख नहीं बनाई राजा की, रोशनी नहीं है उस आंख में, एक ही आंख, सच्चाई इसमें है लेकिन अच्छा नहीं मालूम पड़ रहा है। और तीसरे वाले ने कैसा बनाया था, तीसरे वाले ने राजा को निशाना बनाते हुए, छत्री है, तीर कमान लिए हुए हैं, निशाना लगा रहे हो, निशाना लगाते समय एक आंख तो बंद ही हो जाती है, तो उसने ऐसे बनाया कि एक आंख मानो बंद है और राजा निशाना लगा रहे हैं। सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद आई, वही चित्र सबको पसंद आया कि राजा की सूर वीरता भी दिखाई पड़ रही है, सौंदर्य भी दिखाई पड़ रहा है और सच्चाई सच्चाई भी है कि राजा की एक आंख तो नहीं है। कितनी सावधानी रख करके और हमें अपने वचनों का प्रयोग करना चाहिए, इससे यह मालूम पड़ता है कि सच तो बोलना है लेकिन प्रिय भी हो, और अकेला प्रिय हो लेकिन झूठ हो तो वो भी नहीं बोलना है। दोनों स्थितियां हैं कि सच भी बोलना है लेकिन प्रिय होना चाहिए दूसरे को। कारण प्रिय तो हो ही लेकिन हितकारी भी हो, यह भी साथ में। वास्तव में प्रिय वही है जो हितकारी है। जहां भी मैं देखता हूं, जब बहुत पढ़ने और डिस्कशन के बाद इस बात पे बहुत विचार किया कि प्रिय के मायने क्या है, तो कहते कर्ण प्रिय तो है ही, लेकिन कई चीजें होती जो कान से सुनने में बहुत प्यारी मालूम पड़ती हैं लेकिन उनसे जीवन का कोई कल्याण नहीं होता। तो कहते नहीं, वो कल्याण से समन्वित होनी चाहिए और सुनने में तो प्यारी लगनी ही चाहिए और अपना कल्याण करने वाली भी। तो इतनी सारी स्थितियों के बाद हम उस सत्य को बोल पाएंगे। भैया सत्य को पाना तो बहुत आगे की चीज है, अभी तो हम सत्य को बोलना सीखने के लिए और इतना थोड़ा सा प्रयत्न कर रहे हैं कि क्या संभव है कि मैं अपने जीवन में झूठ से बच सकूं और सच बोल सकूं। उसके लिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। वैसे तो हम सब जानते हैं जो व्यक्ति जितना झूठ बोलता है, मैं तो सोचता हूं वो उतने ही ज्यादा सच को जानता है। हां तभी तो वो झूठ बोल रहा है, नहीं तो क्या जरूरत पड़ी थी उसे, वो तो जैसा था वैसा बोल देता, पर उसको जैसा है वैसा बोलना नहीं, इसलिए तो वो जैसा नहीं है वैसा बोल रहा है। देखिए आप, नहीं तो कुछ मुश्किल ही नहीं थी, मुझे झूठ बोलने की जरूरत कब पड़ती है, जबकि मैं सच्चाई जानता हूं तब मुझे झूठ बोलने की जरूरत पड़ती, नहीं तो नहीं। देखो आप, ये सोचो कि नहीं नहीं वो तो हम जानते नहीं थे इसलिए झूठ बोल गए, नहीं ऐसा हो नहीं सकता। अनजाने में कोई झूठ नहीं बोलता, अनजाने में जो झूठ बोलता उसकी झूठ झूठ नहीं कहलाती, उसका इंटेंशन समझ में आ जाता है। मां ऐसा तमाचा मारने को करती है बेटे को, बेटा तमाचा नहीं देखता, उधर देखता कि एक्सप्रेशंस क्या है, फेस एक्सप्रेशंस क्या है, इनका मकसद क्या है, मेरे ऊपर ये हाथ पटकने वाली है मां, ये काय के लिए कर रही है। कभी कभी प्यार से भी मां और हाथ गाल पर मार देती है, सिर पर मार देती, पीठ पर एक थौल टिका देती है, वो प्रेम से भर कर के भी टिकाई जा सकती है। और कभी कभी अपने अहंकार बस भी, और कभी कभी जो है बच्चा बिगड़ता है तब भी मां को थोड़ा हाथ उठाना पड़ जाता है, लेकिन एम्फेसिस अलग अलग है। हाथ उठने की प्रक्रिया एक जैसी है लेकिन उसके पीछे का भाव बिल्कुल अलग अलग है। वो तो हर एक कोई को समझ में आने लगता है कि अज्ञानतावश अगर किसी ने इनोसेंटली बहुत भोलेपन में और किसी ने अगर झूठ भी बोल दिया है तो वो झूठ नहीं कह रहा है। बच्चों के द्वारा बोला गया झूठ अपन इसलिए तो झूठ नहीं मानते क्योंकि वो इंटेंशनली थोड़ी बोल रहे हैं, उनके भीतर कोई ऐसा कषाय भाव थोड़ी है। वो तो हम लोग जो बड़े हो जाते हैं तब क्रोध लोभ भीरुत्वहाश इन चार से मिश्रित होकर के वचन बोलते हैं तो सब झूठ है, भले ही सच बोला हो। क्रोध से भर करके बोला गया सच भी झूठ के कैडर में डाल रहे हैं, लोभ से वशीभूत होकर के बोला गया सच भी झूठ है। क्रोध लोभ भीरुत्व भयभीत होकर के भी लोग झूठ बोल देते हैं, या कि सच बोल सच नहीं भी होता है तब भी भयभीत होकर के बोल देते हैं। और क्रोध लोभ भीरुत्व हास हंसी मजाक में तो अपने वाक चातुरी को बताने के लिए, अपनी हाजिर जवाबी को प्रकट करने के लिए, अपनी चतुराई को प्रकट करने के लिए हंसी मजाक में भी जो है हम बहुत सारे झूठ बोल जाते हैं। ये हमारे इंटेंशन के बिगड़ने से अनुबीजी भाषणम, इसलिए सावधानी रखने की आवश्यकता वहां है कि हमारा अपना अज्ञान अगर हमें झूठ बोलने को मजबूर करता है तो ज्यादा हर्जा नहीं है। जब हम ज्ञानवान होकर के जानबूझ करके अधिकांश मौके पर जो है हम जानबूझ करके भी सच भी बोलते हैं इंटेंशन खराब करके, और झूठ तो बोलते ही हैं। इनोसेंटली कैसे सच बोला जाता है मालूम नहीं आपको? अरे अब पिता ने कहा, उनसे मिलने आए हैं उनके मित्र, तो बेटे से कहा कि कह दो पिताजी नहीं है, तो बेटे ने जाकर के सीधा कह दिया कि पिताजी कह रहे हैं कि कह दो पिताजी है नहीं। इनोसेंटली बोला गया सच है, उसे नहीं मालूम कि वो जो कह रहा है, पिता ने जो कहलवाया है ऐसा कहने से और क्या रिजल्ट आएगा। वो बहुत सहजता में बोला गया, सच और झूठ अलग समझ में आता है। एक और भोले भालेपन या अज्ञानता में कैसे हम सच बोल देते हैं, कैसे हम झूठ बोल देते हैं। एक व्यक्ति रास्ते से चला जाता था, ये बातें इसलिए अपन कर रहे हैं कि शायद ऐसा हम भी कई बार ऐसे चूक जाते हों तो अपनी चूक को संभाल लें भैया, और क्या करें, कैसे जो है हम उस उत्ते बड़े सत्य धर्म को और उस भाषा समिति को उपलब्ध हो पाए हो और उस सत्य को प्राप्त कर पाए। ऐसे ही जो रोजमर्रा के जीवन में हम देखते सीखते समझते हैं उसी से तो हमें सीखना पड़ेगा। वो थोड़ा बुद्धि उसकी कमती थी, लोग तो उसको जो है वो पागल ही कहते थे, पर पागल व्यक्ति का भी अपना कोई स्तर तो होता है, बौद्धिक स्तर तो होता है। वो बहुत भोले भालेपन में और अपना जीवन बिताता था। एक दिन क्या हुआ, अब ना कभी वो कंघी करता था, ना सिर में तेल वेल डालता था, चेहरा भी बड़ा ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा, कपड़े भी खराब और आपसे जैसे तैसे, तो वो घूरे घूरे पे जाके सामान भी उठा लेता था, कागज इकट्ठे करेगा कहीं कुछ करेगा। तो एक दिन उसको एक टूटा फूटा सा आईना मिल गया, उसने उसको पहुंचा पाछा और उसमें ऐसा देखा, उसमें जैसे ही उसने देखा तो टेढ़ा मेढ़ा बिखरे हुए बाल खराब सा चेहरा, मालूम वो क्या कहता, उसको टुकड़े को उठा करके और जोर से फिर घूरे में फेंक के कहता कि इन गुनों में तो घूरे में डरे, ऐसे नहीं होते तो काय कौन डरे होते। अब बताओ आप, उसने सच तो बोला है लेकिन कितने इनोसेंटली, वो अपने बारे में ही रिमार्क कर रहा है कि इन गुनों में ऐसे हो, वो समझ रहा है ये कि जैसे ये दर्पण ही ऐसा है, वो दर्पण वैसा नहीं है, पर वो ये नहीं जानता और अपने बारे में ही वो कह रहा है कि इन्हीं गुणों में तो घूरे में पड़े हो। ऐसे अपन कई बार जो है और सच और झूठ का अज्ञानतावश प्रयोग करते हैं, उसमें भी सावधानी तो रखनी चाहिए, पर उसमें उतना दोष नहीं है जितना दोष हम जानबूझकर, मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि जितना भी झूठ बोला जाता है जानबूझकर के ही बोला जाता है। हम सच जानते हैं, हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए और हो सके तो उस अपने झूठ को स्वीकार करने की आदत डाल ली चाहिए। जो व्यक्ति झूठ बोलने से नहीं बच पाता है उसे कम से कम एक आदत अपने भीतर निर्मित कर लेनी चाहिए कि झूठ को स्वीकार करूंगा, टू कन्फेस इट। मैं जब भी झूठ बोलूंगा देर सबेर उसे स्वीकार कर लूंगा, अपने अंतरंग में तो स्वीकार करूंगा ही, बाहर प्रकट में भी कहने का साहस रखूंगा कि वो जो मैंने कहा था वो झूठ था। सच ये है, ये साहस का काम है। ऐसा साहस जब हमारे भीतर आएगा तब वास्तव में हम उस सच को प्राप्त कर पाएंगे जिसके लिए कि हम इतने दिनों से प्राप्त करने के लिए लालायत हैं। और अगर हम अपने इस व्यवहार में से ऐसे झूठ को नहीं हटाएंगे और ऐसे सच को प्रवेश नहीं देंगे, सच का सम्मान नहीं करेंगे जैसा मैंने कल कहा था, तो शायद हम कभी भी और सच्चे तो हो ही नहीं पाएंगे। सच्चे हम तब हो जाते हैं, झूठ बोल के भी हम सच्चे हो सकते हैं। मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूं, झूठ बोल के भी हम सच्चे कब हो जाते हैं? जब हम उस झूठ को स्वीकार कर लेते हैं तो हम सच्चे हो जाते हैं। उसी क्षण हम सच्चे हो जाते हैं जबकि हमने झूठ बोला है। लेकिन झूठ बोल करके और फिर हम उस झूठ को जब छिपाने की कोशिश करते हैं तो और अधिक झूठे होते चले जाते हैं। एक एक झूठ को छिपाने के लिए सौ सौ झूठ बोलना पड़ती हैं और फिर तो पूरा जीवन ही झूठा हो जाता है। इसलिए सावधानी रखने की आवश्यकता है। मुनि जन किस तरह सावधानी रख करके वचन का व्यवहार करते हैं ये भी हमें अपने आसपास देखना चाहिए। सज्जनों की संगति करना चाहिए, झूठे आदमी की संगति से बचना चाहिए, सच्चे व्यक्ति की संगति करनी चाहिए, तब जाकर के हमारा ये झूठा संस्कार या झूठ बोलने का संस्कार, झट से इनकार करने का संस्कार, हाँ झट से इनकार कर देते हैं, सच्चाई से इनकार कर देते हैं। सबसे पहले मां पहले कहती थी कि जाओ वो हमारा काम करके आओ, हम नहीं करते, हमें फुर्सत नहीं। फिर पांच मिनट बाद, अच्छा बताओ क्या कह रही थी। अरे तो इस समय कह देती पहले, लेकिन आदत तो है कि पहले मना करना है मुझे। ये ऐसी आदतें निर्मित हैं हमारी, सबसे पहले तो मुझे झूठ ही बोलना है। बच्चों को हम सिखाते भी बचपन से वो ही हैं। क्या सिखाते हैं? ये पेन, वो मांग रहा है, जिद कर रहा है, तो पेन तो देना नहीं। ओ वो देखो वो हवा ले गया। हवा कहां ले गया? आप उसको झूठा बना रहे हैं, आप खुद झूठे बन रहे हैं और उसको झूठ सिखा रहे हैं। ये बहुत इनोसेंटली हमने तो बहुत अज्ञानतावश ऐसा कर दिया, लेकिन कर तो दिया। अब ऐसे ही जब वो बाथरूम में रखी आपकी घड़ी को धीरे से उठा के अपने बस्ते में रख के स्कूल चला जाता है और आप ढूंढते हैं और शाम को लौट के जब आते हैं पूछते हैं क्यों बेटे तुमने हमारी घड़ी तो नहीं देखी? हमने काहे को देखी आपकी घड़ी? फिर जब हम बहुत मनाते समझाते तो कहता कि बाबा ले गया होगा आपकी घड़ी, और धीरे से निकाल के कहता कि यही है, यही है, आपने तो ऐसा सिखाया था हमको कि ऐसा करने से मजा आती है। मजे में भी हम झूठ सिखाते हैं और एक संस्कार जो है अपने भीतर झूठा डालते हैं। ये बहुत छोटी सी चीज है जो हमें नहीं मालूम है कि हम ये कर चुकते हैं। ये सावधानी भी आवश्यकता है। खेल खेल में भी मैं झूठ का संस्कार ना दूसरे का डालूं और ना स्वयं भी डालूं, तभी सच से बच सकते हैं। एक आखिरी उदाहरण सुना करके और मैं अपनी बात पूरी करूं। आज अपन ने सत्य धर्म के बारे में पिछले दो तीन दिनों से बहुत सारी चर्चाएं करी हैं, और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं भैया, जिसकी जितनी ज्ञान में आती चली जाएं और उन सबको जान करके और हटाने की कोशिश करना कि ऐसे यहां हम झूठे पड़ जाते हैं, ऐसे हम यहां झूठ बोल देते हैं। झूठे पड़ जाना और झूठ बोलना दोनों पर विचार करने पड़ेगा। ऐसे हम यहां झूठे पड़ गए, ऐसे हमने यहां झूठ बोल दिया है, बस इतना ही है। और ऐसे हम यहां सच्चे बन सकते हैं और ऐसे हम यहां सच बोल सकते हैं। इस तरह सावधानी का काम है, अपन ने तो यही समझा। और कैसी सावधानी मुनि जन सच बोलने में रखते हैं बताइएगा। बड़ा वो घटना आपने भी सुनी होगी, बहुत प्रचलित घटना है। मुनि महाराज बैठे हैं पेड़ के नीचे और एक गाय भागते भागते आती और उनके पीछे के रास्ते पर दौड़ के चली जाती, और उसके दो गाय के जाने के एक मिनट के बाद ही और एक हांफता हुआ व्यक्ति दौड़ता हुआ आता है। उसको देख के मुनि महाराज समझ जाते हैं कि ये तो इस गाय का मालिक नहीं है, इस गाय को मारने वाला है, कसाई मालूम पड़ता, उसके परिणामों से मालूम पड़ने लगता। ऐसा जान करके अब वे क्या करें, उन्हें सच भी बोलना है लेकिन हितकारी सच बोलना है, अहितकारी सच नहीं बोलना है। कितनी कंडीशन है, झूठ तो बोलना नहीं है, बोलना सच है, लेकिन दूसरे का अहित हो ऐसा सच भी नहीं बोलना, बताइए मुश्किल ये है। तो मौन रह जाए, तो मौन रह जाए तो और मुश्किल हो जाए, वहां मौन भी नहीं रहा जा सकता, वहां तो बोलना आवश्यक है। जहां बोलना आवश्यक है वहां पर कंडीशन लगा रहे हैं कि झूठ तो बोलना मत और सच, सच भी हितकारी सच बोलना। अकेले सच बोलना होता तो भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी, बोल देते कि भैया अब भी निकली है, क्या इसमें दिक्कत थी, झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। यही तो कहा था आपने कि या तो बोलना नहीं बोलना, तो सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। नहीं, लेकिन अकेला सच बोलना नहीं लिखा, हितकारी सच बोलना। अब बहुत मुश्किल में है कि क्या कहें, जवाब तो देना है। तो महाराज फौरन खड़े हो जाते हैं और कहते कि ए भैया, जब से मैं यहां खड़ा हूं तब से तो कोई गाय नहीं निकली यहां से, बताइएगा सच बोला कि झूठ बोला। बोला तो झूठ ही है, गाय तो निकली है, लेकिन सच बोला है। जब मैं बैठा था तब कोई गाय निकली हो तो मुझे क्या, वो तो तुमने, मैंने कहा ही नहीं। मैं जब से यहां खड़ा हूं तब से कोई बात, खड़ा तो मैं अब भी हुआ हूं, मेरे बैठे बैठे गाय निकल गई थी। कैसे आसानी से जो है अपने आप को बचा लिया, सच भी बोल दिया, गाय भी बच गई। हितकारी सच के लिए कितना सावधान होना पड़ता है, ये घटना जब जब मैं पढ़ता हूं तो लगता है कि हाँ, इतनी सावधानी रखना आवश्यक है। हितकारी सच बोलना है। इन सारी चीजों को भूल भी जाओ भैया तो आखिरी में क्या याद रखना, मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे सच बोलना है, लेकिन सच बोलने से पहले मेरे परिणाम मुझे देख लेना है। असावधानी पूर्वक बोला गया सच दूसरे का अहित करता है, इसलिए मुझे सावधानी पूर्वक बोलना है। सावधानी के मायने हैं कि जिससे दूसरे का हित सधे वही सच बोलना है, जिससे दूसरे का अहित होता हो वैसा सच भी मुझे नहीं बोलना है। क्रूर वचन, कर्कश वचन, कठोर वचन, दूसरे को पीड़ा उत्पन्न करने वाले वचन नहीं बोलना है। कई बार मन में ये भाव आ सकता है कि बिना डांटे बिना जोर से कड़े वचन बोले और कहां कोई मानता है, ऐसा विचार आ सकता है भैया, तो ऐसा विचार सिर्फ कंसोलेशन है, मन को समझाने का है कि अरे हमने तो जो है इसलिए कठोर वचन बोलना पड़े कि जी समझते ही नहीं हते, जी मानते ही नहीं हते। तो कहते भैया अब्बे तो वैसे भी ने मान है, आपके कठोर वचन बोलवे के बाद भी उनको ने मानने हुई है तो हम ने मान है, पर आपने अपने मन को जो कठोर बनाया है उसका परिणाम तो आपको भोगना पड़ेगा। आपने भले ही दूसरे के हित के लिए कठोर वचन बोले हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि दूसरे का हित सद ही जावे, संभव है कि अहित हो जाए, इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। ऐसी सावधानी रख करके हम अपने जीवन में सच का प्रयोग करें और झूठ से बचने का प्रयास करें। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर।